वंदे सच्चिदानंदम वंदे सच्चिदानंदम वंदे भोगिलांछित योगिवांछित चरण बदन वंदे वंदे परम पुराण परात्परम पूर्णम खंड परात्परम त्रिसंग शुद्धम सगबुद्ध दुर्वेदम वंदे सच्चिदानंदम वंदे
मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। मित्रों, ये थी जगत निर्माता सर्वशक्तिमान ईश्वर की दयालुता। अब ईश्वर द्वारा स्थापित होने जा रहे इस विधान रूपी महल की नींव वो प्राचीन काल है जहां उन्होंने न सिर्फ मानव जाति की सृष्टि की वरन इस संपूर्ण जगत के अपने सपने को साकार किया, अपनी एक विशेष प्रजा चुनी और उसे हर विपत्ति हर संकट से बचाया। ये प्रजा थी इज़राइल के निवासी। ईश्वर की कृपा से इज़राइली फलते फूलते गए। वक्त की रफ्तार के साथ ईश्वर पर उनका विश्वास घटता बढ़ता था। ईश्वर की असीम आशीष पाने के बावजूद कुछ इज़राइली अपने ईश्वर को छोड़ पराए देवी देवताओं को आराधने लग गए। ईश्वर चाहते थे कि उनका ये विश्व स्वर्ग सा सुंदर और शांति से परिपूर्ण हो, परंतु मानव ने अपने दुष्कर्मों और पापों के द्वारा उसे घृणा, लालच, हिंसा और कठोरता के कारण पथरीले रेगिस्तान सा बना दिया। लालच और शोषण ने इस विश्व को आवासहीन और समाज को सौहार्दहीन कर दिया। राजनैतिक उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे में ईश्वर को मानव की रक्षा करने, उसे पापों से मुक्त करने के लिए कुछ करना था, क्योंकि ईश्वर ने मानव ही के लिए तो इस सृष्टि की रचना की थी। तो क्या वे मानव को यूं ही पापमय स्थिति में लीन रहने देते? आदिकाल से ही ये विश्व मानव के हाथों में था। आखिर ईश्वर को ही मानव को विश्व के प्रति जिम्मेदार और एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए सचेत करना था। अतएव अब समय आ गया था कि ईश्वर अपने और मानव के, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई पाट दें। इसलिए उन्होंने निश्चय किया। बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वो मेरे लिए तुझसे उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता उसे प्रसव न करे। वो प्रभु के सामर्थ्य तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वो देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। ईश्वर का मानव की मुक्ति का कार्य उनकी प्रभुसत्ता से नहीं, मगर अब उसे उनके प्रेम से संपन्न होना था। प्रेम में एक सहयोगी की जरूरत होती है। प्रेम में सहयोगी पर शासन नहीं होता, न ही उससे कतरा कर गुजरा जाता है। प्रेम में जोर जबरदस्ती नहीं, वरन आजादी और प्रेमी के प्रति स्वतंत्र प्रत्युत्तर होता है। इसी कारण प्रेम एक जोखिम भरा कार्य है। इस विश्व में और जीवन के दैनिक उतार चढ़ावों में इस जोखिम का सामना मानव को करना पड़ता है, जिसमें कोई ये नहीं जानता कि वे मिलकर जीवन राह पर विजयी होंगे या नहीं। अब इसी जोखिम को ईश्वर को भी उठाना था, तो क्या ईश्वर इस जोखिम को उठाएंगे? क्या ईश्वर सृष्टि निर्माण व मुक्ति का कार्य मानव हृदय और मानव हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो सकते हैं? दाऊद के वंशज, मेरी बात सुनो। प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वो ये है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखेगी। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो उन्हें प्रेम की ही नहीं वरन शक्ति की जरूरत थी। मगर इस समय ऐसा वक्त आ गया था जब उन्हें मात्र प्रेम की जरूरत थी, और प्रेम से पूरित हो ईश्वर ने अपने सेवक दाऊद के वंश में से चुना यूसुफ को, जो कि एक धार्मिक व्यक्ति था। यूसुफ की मंगनी हुई थी मरियम नाम की एक नेक, पवित्र और धार्मिक कन्या के साथ। उधर ईश्वर भी अपने सृष्टि के मुक्ति कार्य के लिए कोई सहयोगी ढूंढ रहा था, ताकि अपने पुत्र को उनके माध्यम से सृष्टि में भेजे। पर समस्या ये थी कि कौन उनके पुत्र को ग्रहण करेगा? क्या वो अकेला इस धरती पर आ सकता है? यदि कोई उसे ग्रहण न करेगा, तो इस पृथ्वी का रूप कौन सुधारेगा? क्या ईश्वर के पुत्र के लिए इस अन्यायी, क्रूर, हिंसक, भेदभाव से भरे विश्व में जगह है? निश्चय ही विश्व का रूप इतना बिगड़ा और इतना कुरूप नहीं कि कोई धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के इस नेक कार्य में सहयोग न दे सके।